अभी हम जो सत्र कर रहे हैं उसका नाम है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, दिल की दिल से बातें। और हम शुरू करें उससे पहले जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशिष्ट व्यक्ति, अनुभवी योगी, सीनियर फैकल्टीज हैं, मैं सबसे पहले दिव्या बहन को स्टेज पर आमंत्रण करना चाहूंगी और हम सभी तालियों से दीदी का स्वागत करते हैं। दिव्या बहन हमारे बीच में हैं, साथ साथ हमारे ईवी गिरीश भाई जिनका पहले दिन सेशन था वो भी हमारे बीच में हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगी कि मंच पर आ जाएं और हम सभी ईवी गिरीश भाई का भी तालियों। हम सभी दो मिनट का साइलेंस लेते हैं, उसमें हम सभी सेट भी होंगे। शांति। आप जो मंच पर देख रहे हैं हमारे दिव्या बहन है, ये गिरीश भाई है, ये बहुत विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने पूरा ही जीवन अध्यात्म के मार्ग पर स्पिरिचुअल जर्नी में बिताया है और इनके बहुत सुंदर अनुभव हैं। हमारे जो प्रश्न है उसका बहुत सरल शब्दों में वो जवाब दे सकते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव की अथॉरिटी है। सिर्फ ज्ञान नहीं है लेकिन उस ज्ञान को अपने जीवन में लेकर के आया है। तो मैं तो फिर से कहूंगी कि एक बार वापस हमारे इन विशेष रत्नों का, प्रभु रत्नों का, अनुभवी आत्माओं का हम दिल से यहाँ पर स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दिव्या बहन जो हमारे साथ बैठे हैं, आप पहले भी दीदी से मिले हैं। दीदी पिछले लगभग 56 ईयर्स से और सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूंगी दीदी से कि ये स्टैमिना कहाँ से आता है कि सदा मुस्कुराता चेहरा, इतनी स्टेबिलिटी। और जब इतना बड़ा कोई कारोबार होता है तो उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते हैं लेकिन इतनी सौम्यता, इतनी स्टेबिलिटी, हर्षित मुख चेहरा, ये कैसे पॉसिबल है?
था कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, होगा या नहीं होगा, लेकिन जब से इस विद्यालय के महसूस करना तो अपने आप में वो एक बल और एक ताकत है, उनसे भर जाती है। जब हमारा संकल्प स्ट्रांग होता है, दृढ़ होता है और उस प्रोग्राम के लिए ये चीज बननी ही है, एक आत्मा की आवाज होती है और इसीलिए कोई कितना भी उसमें प्रॉब्लम आए, मुझे सिखाना है, ये प्रसंग परिस्थिति को लाग के मुझे आगे बढ़ाना है, इसीलिए आ रही है। इसीलिए कोई बात की फिक्र ना करते हुए एक कार्य करने का जोश बना रहता है। ओम शक्ति।
बहन को देखकर मुझे याद आ रहा था, दुनिया में कहते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा, पर सत्य ये है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होता पर जो आप हैं वो होता है। माने इट इज नॉट दैट व्हाट यू वांट यू विल गेट बट व्हाट यू आर. तो जब आप खुद ही इतने श्रेष्ठ हैं तो जीवन में सफलता तो होनी ही है और आप उसका एक मिसाल हैं. हमारे साथ इगिरिश भाई भी हैं. आप पहले दिन उनसे मिले थे. मिले थे कौन कौन इगिरिश भाई से मिले थे? हंसाया था उन्होंने आप सभी को बहुत. तो आप एक ट्रेनर हैं, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ट्रेनर हैं, और विशेषता तो आपकी यही है कि आप सदा प्रसन्न रहते हैं. पर ये इजी नहीं है. हम देखते हैं कि ई गिरीश भाई के साथ हमारे पूरे ही यज्ञ में ये चीज जुड़ी हुई है कि ई गिरीश भाई मना सदा स्माइलिंग, सदा हंसना, सदा हंसाना. पर सदा खुश रहना इजी है मुश्किल है? क्या लगता है आपको, इजी है मुश्किल है? सदा हमेशा चाहे कोई विघ्न हो, कोई बात हो. तो पहले तो ई गिरीश भाई ये क्या राज है, आप हमेशा हर समय हर वक्त हर साल ऐसा मुस्कुराता चेहरा कैसे पॉसिबल है?
हंसी की बात बताता हूँ, दो उंगली का कमाल है. पर इतना सिंपल है. ठीक. और अगर मैं ज्ञान के आधार से कहूँ तो मैं आत्मा का ओरिजिनल नेचर ही खुशी है. और ये जो तनाव है, दुख है, चिंता है, ये सब हमने सीखा है, अक्वायर किया है, और उसकी गलत आदत हो गई है. तो जब हम उससे हट करके अपने ओरिजिनल सत्य स्वरूप में टिकते हैं, ये स्मृति रहता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, तो स्वाभाविक वो खुशी कैसी भी परिस्थिति आए मैं अपने आप को उसमें शिफ्ट कर सकता हूँ. और मेरी खुशी का आधार बाहर नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति नहीं है, मैं ओरिजिनल वैसा ही हूं. तीसरी बात, हमें ये भी समझना है कि खुशी का विज्ञान क्या है. स्कूल में, कॉलेज में, घरों में खुशी के बारे में नहीं सिखाते हैं. इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बाकी सबका ज्ञान मिलता है. सदा खुश कैसे रहना है ये भी हमें पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उसे अर्जन करना पड़ेगा. तो इस विद्यालय में हमें सिखाया जाता है कि दो बातों का अंतर है, एक जिसको हम अंग्रेजी में प्लेजर कहते हैं और एक हम हैप्पीनेस कहते हैं. प्लेजर का अर्थ, प्लेजर हम हमेशा कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, खा के, सुन के, सूंग के, देख के. खुशी का आधार कर्मेंद्रियां नहीं है. खुशी इज इथरियल इन नेचर. तो सब लेकर के जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो प्लेजर है, जो टेम्पररी है. और खुशी का आधार इस विद्यालय में सिखाया जाता है वो है देना. प्लेजर का आधार है लेना. तो जब हम देना सीख जाएंगे, छोटी सी मुस्कुराहट, अपना सहयोग, किसी की बातों को हम समझ लें, किसी के दुख को हम समझने के लिए हम अपना वक्त दें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी दें. और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे अच्छी बात हमने देखा, यहाँ हम सबको देते हैं. आप लोगों को गिफ्ट मिली या नहीं मिली? मिला या नहीं मिला? हाँ. तो देने की भावना हमारा स्वाभाविक कल्चर होना चाहिए, जो हमने यहाँ ब्रह्मा कुमारी से सीखा. तो जब आप देते जाएंगे तो आप स्वाभाविक खुश सदा रह पाएंगे.
तो गिरीश भाई, मेरे पास देने के लिए होना तो चाहिए ना. ये यही कहते हैं, देते जाओ देते जाओ. मैं ही देता जाऊं, हर बार मैं ही दूं, हर बार मैं ही मरूं, हर बार मैं ही सहन करूं, तो फिर मुझे कौन देगा?
जी, उसके लिए फिर हम कहते हैं मेडिटेशन करना पड़ेगा. जब हम प्यार, शांति, सम्मान, रिस्पेक्ट को देने की बात कर रहे हैं, वो देने के लिए फिर मेरे पास होना चाहिए. और होने के लिए उसका जो सोर्स है, खुशी का सोर्स पैसा नहीं है, खुशी का सोर्स संबंध नहीं है, खुशी का सोर्स वस्तु, वैभव, पोजीशन नहीं है. खुशी जहां उत्पादन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इस हॉल में जितने भी, चलो सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं.
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। विकराल विनाश खड़ा आगे सतयुग में अब तुम्हें आना है।
धाम में तुम्हें
सतयुग में अब तुम्हें आना है।
धाम में तुम्हें गाना है।
तो जैसा हम कह रहे थे कि मनुष्य बहुत पैसा कमाना चाहता है और फिर उसका जो आधार होता है कि उससे मुझे क्या मिलेगा, चलो उससे गाड़ी बंगला ऐशो आराम मिलेगा, फिर हम सोचते हैं ये सब मिलेगा तब मैं खुश रहूंगा। ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है। अगर ये फॉर्मूला करेक्ट होता तो संसार के वो सब लोग बहुत सदा खुश होते थे, बट ये फॉर्मूला फ्लॉड मेंटल मॉडल है, इसीलिए इसको सीखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए किसी को मैं पूछूं कि भाई कौन सा प्रकार का ड्रेस पहनना चाहते, कन्या को हमने पूछा तो उन्होंने कहा जीन्स एंड टी शर्ट, हमने कहा क्यों, बोला कंफर्टेबल। मनुष्य को हर चीज कंफर्टेबल ही चाहिए, कंफर्टेबल होगा तो क्या होगा, तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन वो खुशी की प्राप्ति में फिर वो कपड़े से, खुशी की प्राप्ति में संबंध से, खुशी की प्राप्ति में धन दौलत से। तो जैसे ये पूरे बिल्डिंग के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ये अपने आप में बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, इसकी पूरी तार कनेक्टेड है खंभे से, खंभा कनेक्टेड है चार खंभे से, वो कनेक्टेड है जहां पर बिजली पैदा हो रही है, टर्बाइन घूम रहा है। तो सुख और विशेष हैप्पीनेस शांति शक्ति, इसका टर्बाइन धन दौलत संबंध व्यक्ति परिस्थिति सिचुएशन प्राप्तियां, ये सब रखना है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन खुशी के लिए उस जनरेटिंग पॉइंट से कनेक्ट होना जरूरी है जहां पर जैसे बिजली उत्पादन हो रही है। तो खुशी का जो सोर्स है वो परमपिता परमात्मा है, जब हम अपने मन बुद्धि की तार मेडिटेशन माना कनेक्शन उनके साथ जोड़ते हैं, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू अ लोअर पोटेंशियल। बस दो ही चीजों का भेद हमको समझना है, एक शरीर और दूसरी आत्मा। हमने सोचा इसके द्वारा आत्मा सुख शांति को प्राप्त करेगी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। इसका भी ध्यान रखिए, इसकी भी सुख सुविधाओं का ख्याल रखिए, इसके लिए भी एक्सरसाइज करिए। आपको जुम्बा क्लास में देख रहा था कितने एनर्जेटिक होकर कर रहे थे, लेकिन उतनी ही एनर्जी आत्मा का एक्सरसाइज, वहां थोड़ा सा हम पीछे हट जाते हैं। शरीर को अच्छा अच्छा खाना, आत्मा का खाना, शरीर के लिए नींद, आत्मा का आराम। तो ये सब जब हम आत्मा के लिए करना शुरू कर जाते हैं तो सदा खुश रह सकते हैं, और परमात्मा वो सोर्स है, और उस सोर्स से हम फिर खुशी की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जब मेरे पास होगा खजाना तो मैं फिर दूसरों को दे पाऊंगा। ठीक है, तो भगवान बहुत इंपॉर्टेंट है सदा खुश रहने के लिए। ओम शांति।
अभी आपके भी कुछ प्रश्न आए हुए हैं जो हम दीदी से पूछेंगे। दीदी, एक प्रश्न ऐसा आया है कि यहाँ पर आकर हमने सुना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में नहीं है, पर हमने इतना समय ऐसा सुना है, तो कैसे उस चीज पर विश्वास करें कि वो कण कण में नहीं है?
काफी समय से हम कथाएं कीर्तन में सुनते आए हैं और शास्त्रों में ऐसी बातें पढ़ते भी आए हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये सोचना है, प्रैक्टिकल चीजों को सोच के लॉजिक क्या कहता है ना, उसमें सच्चाई भी कहा सुना और हमने सत्य है वो मान लिया है ना। इसलिए इस विद्यालय में बहुत सुंदर बात समझाई जाती है कि हम सब बैठे हुए हैं और सब भगवान हैं, ऐसा अपने आप के लिए आप स्वीकार करोगे? जो समझता है कि मैं भगवान हूं वो हाथ उठाए। सर्वव्यापी है तो आप में है ही ना, लेकिन हम खुद अपने आप को भगवान कहलाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं है हमारे में। भले कोई कहे कि भगवान सब में है, लेकिन वो क्वालिटी दिखाई देती है, वो शक्ति दिखाई देती है, तो भगवान कैसे हैं? और भगवान सारे ही भगवान बैठे हैं, सारे वर्ल्ड में जितने हैं वो मनुष्य नहीं, करोड़ों क्या हो गए भगवान। और इतने भगवान जहां बस रहे हो, रह रहे हो, तो वो सृष्टि कैसी होनी चाहिए? भगवान का नाम भाई ने बताया कि उनको याद करते हैं तो शांति सुख मिलता है, और इतने सारे भगवान बैठे हैं और पूरे वर्ल्ड में भगवान ही है, तो इस सृष्टि की ये स्थिति क्यों है? सोचना चाहिए ना उस पर। तो एक्सेप्ट होता है कि सारे विश्व में भगवान ही बैठे हैं? नहीं। आज भगवान भगवान का खून कर रहा है, रेप कर रहा है, भगवान भगवान पर कर रहा है, लड़ाइयां लग रही है, ये भगवान कर रहा है। भगवान का ये कार्य नहीं, भगवान तो सुखदाता है, सुख देने वाला है। आज मनुष्य एक दूसरे को सुख देते हैं, देने की बात तो छोड़ दो, एक दूसरे का सुख देखा भी नहीं जा रहा है, देने की बात तो दूर हो गई। जो ये भगवान है जो किसी का सुखी ना देख सके, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप हमारे सेवा केंद्रों पर जाएंगे तो डिटेल्स में ये सुनेंगे समझेंगे, तो आपका मन खुद, आपकी बुद्धि खुद ये एक्सेप्ट करेगी कि भगवान सब में नहीं है।
दीदी, फिर हमें तो कहा जाता था कि हर एक के अंदर के प्रभु को देखो, उसमें प्रभु विराजमान है। अब जब है ही नहीं तो फिर जब हर एक से मिले तो क्या देखें?
जब हम समझते हैं कि हम सब भगवान तो है ही नहीं, लेकिन जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि भगवान की ये रचना है। दूसरा, हम एक दूसरे को देखें तो इसमें इस तन के अंदर प्रकृति के बीच में चेतन आत्मा है। इस दृष्टिकोण से हम एक दूसरे को क्या करें, देखें, शुभ भावनाओं से देखें। ये हमारा दृष्टिकोण एक दूसरे में हो। भगवान के रूप में देखने के लिए कहेंगे तो वो तो देखा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि वो चीजें नजर ही हमें नहीं आती है। हमारे में चेतना है, मैं बोल रही हूँ। यदि वो सोल ना हो मेरे में तो ये शरीर बोलेगा, डेड बॉडी देखता है, डेड बॉडी बोलता है, कुछ भी नहीं करता। उसमें जब चेतन आत्मा है तभी सारी एक्टिविटी, आप सुन भी रहे हो, आपकी आत्मा सुन रही है, मेरी आत्मा बोल रही है। तो आत्मा के भाव से, दृष्टिकोण से देखें।
गिरीश भाई, यूं का प्रश्न है कि जब हम यहाँ पर देखते हैं संस्था में, तो कई बार बहुत छोटी उम्र से आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं। आपका परिचय भी मैं देख रही थी, तो आप पिछले 26 सालों से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और कहीं फिर अपना पूरा का पूरा जीवन भी समर्पित कर देते हैं। तो पहली चीज तो, आपके भी जीवन में ऐसी क्या इंस्पिरेशन बनी जो आप जुड़े, और क्यों फिर हम ये मार्ग फॉलो करते हैं? और उसमें भी हम कई बार देखते हैं कि कहीं सेंटर पर रह जाते हैं, कहीं यहाँ हम बेहद के कार्य में आए तो यहाँ बहुत लोग रहे हुए हैं, तो फिर रह क्यों जाते हैं? ये समाज से भागना है, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ना है, क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें।
जब समर्पण की बात आती है तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप इतने बाल्यकाल में कैसे समर्पित हो गए। सचिन,
आप कौन सी एज में वैसे आए थे?
मैं अराउंड 20, मैं पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहा था मुंबई में, तब मुझे इसका थोड़ा सा ज्ञान मिला। सचिन रमेश तेंदुलकर क्रिकेट में समर्पित हो गए। आपने कभी पूछा 11 साल की उम्र में क्या कर दिया जी? लता मंगेशकर अपना जीवन संगीत के लिए समर्पित कर दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विज्ञान के लिए समर्पित कर दिया। कोई राजनेता होता है, कॉलेज लेवल से ही पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लेता है जीवन पर्यंत। हमारी बहनें परिवार के लिए समर्पित हो जाती हैं। 3 बार खाना बनाना, सारा जीवन भर आप समर्पित हो जाते हैं रेलवेज के लिए, रोडवेज के लिए। तो समर्पित तो सब ही कर रहे हैं अपने आप के लिए। आपको क्या मिलता है परिवार में करने के लिए? सचिन तेंदुलकर को क्या मिलता है क्रिकेट से? लता मंगेशकर को क्या प्राप्ति होती है? तो जब हम समर्पण के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति में समर्पण का भाव है, लेकिन एक जो अंतर जो यहां देखा जाता है, ये जो समर्पण है इसमें, क्योंकि हम परिवार और लौकिक और धन संपत्ति और कारोबार से सदा हट करके सेवा के भाव से जब हम दूसरों को देते हैं, जीवन ही हमने जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। लेकिन मैं अगर अपनी पर्सनल जर्नी की बात करूं तो मुझे ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था कि मुझे बहुत ज्यादा दूसरों की सेवा करनी है या दूसरों को खुशी बांटनी है या नहीं। और ये सबसे अच्छी बात है। उसमें भी मैं थोड़ा सा स्वार्थी था, क्योंकि जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया तो कुछ ऐसी बातें मैंने देखी और अनुभव की जो शायद दुनिया में या बाहर मुझे इतना आसानी से नहीं दिखा। एक तो यहाँ की जो दिव्यता थी, यहाँ आंतरिक और बाहर स्वच्छता थी, निस्वार्थ भावना थी, जो एक दिव्य स्नेह था, सेवा भाव था, ये सब हर आत्मा को आकर्षित करता है। तो उस आकर्षण के कारण मैं इस विद्यालय के साथ जुड़ा, इनिशियली देने के भाव से नहीं, इनिशियली बहुत कुछ प्राप्ति के भाव से। और जब हमको आत्मा को वो सब रियलाइज होता है, हम उसको टेस्ट करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं। हर व्यक्ति को जब कुछ प्राप्तियां होती है तो वो उसके और जुड़ना शुरू कर देता है, और उसके अंदर समर्पण का भाव और डेडिकेशन आ जाता है। तो ये कोई बहुत सोच समझ कर मैंने मुझे डेडिकेट होना है, मुझे सब कार्य छोड़ना, ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग ही प्राप्ति से है। ब्रह्मा कुमारीज में मैंने जो समझा, कई लोग ये गलत फहमी के कारण ब्रह्मा कुमारीज के साथ नहीं जुड़ते हैं क्योंकि यहां बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बाहर का खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, आपको रंगीन कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, ये सब बहुत गलत बातें हैं। आपको छोड़ना नहीं है, बहुत कुछ जोड़ना है। जब एक बार अच्छाइयां, स्नेह, शांति, खुशी के साथ आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली आपके अंदर की बुराइयां, चिंताएं, बाहर का आकर्षण जो बहुत टेम्पररी है, बहुत क्षणभंगुर है, वो आपको रास ही नहीं आएगा। और इसको देख करके फिर लोग कहते हैं आप तो बड़े त्यागी हैं, आप तो बड़े, एक्चुअली ये सब त्याग, बुरी चीजों का त्याग करना कोई बड़ी बात है क्या? बुरी चीजों का त्याग करना तो होशियारी है, सतबुद्धि है। तो बुरी चीजों का, क्रोध का, चिंता का, भय का, अशांति का, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए यहां प्राप्ति को फर्स्ट रखिए, और जितना हम उन प्राप्तियों को धारण करेंगे या उसको अनुभव करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपका लाइफ उस सत मार्ग में और अग्रसर होता जाएगा, आप और डिवाइन होते जाएंगे और प्रोफाउंड होते जाएंगे, और आपके अंदर दिव्यता आती जाएगी। हम और उसके मैं आपको फायदे बताता हूँ। हमारे परिवार में जो आपसी मतभेद होते थे वो कम हो गए, चिंताएं कम हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट, एक 20-21 साल का बच्चे का लाइफ का ऑब्जेक्टिव होता है बहुत कमाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत शहरत कमाना है, और उसको ध्यान में रखते हुए कंपटीशन का प्रेशर भी होता है, कोई दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके कारण डर भी लगता है। डर मुक्त जीवन, ये वो सब प्राप्तियां हैं। जब ये सब प्राप्तियां होने लग जाता है तो मुझे तो कभी नहीं लगता है कि मैंने बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ बलिदान किया है। इट इज मोर ऑफ द बेनिफिट्स rather than the sacrifices।
इसको थोड़ा सा आगे लेकर अगर मैं दीदी से पूछूं कि दीदी, जो ईगिरीश भाई ने बात करी प्राप्तियों की, कि ये प्राप्त करना है और ये छोड़ना है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं, पर ये तो हम परिवार में रहकर के भी कर सकते हैं, हम गृहस्थी में भी रहकर के कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमें समर्पित होने की क्या जरूरत है?
मैं ठीक कह रही है कि ये घर में रह के भी जो बुराइयां हैं उनको हम छोड़े, तो यहां समर्पित होने की क्या जरूरत है? घर में रह करके करना और यहां आना, आप अभी भी आप अपने घर से यहां पर आए हो, आपको कुछ फर्क लग रहा है? हाथ उठाओ जिनको फर्क लग रहा हो, यहां पर चेंज लग रहा है ना, यहाँ का वातावरण, यहाँ के वाइब्रेशन, यहाँ की प्योरिटी, स्वच्छता, प्यार, अपनापन। भले हम एक दूसरे के नाम काम धाम को नहीं जानते हैं, लेकिन आपसी प्यार, और यहाँ हमारे ये भाई बहनें सुबह से लेके आप लोग आके बैठते हो, लेकिन ये लोग सुबह से लेकर रात तक आपके साथ रहते हैं, कुछ कर रहे हैं, वो उनके अंदर क्या है? देने की भावना। और जो मुझे संपूर्ण रूप से देना है कि मुझे देख करके सुख मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। यदि मैं घर में रह करके करूंगी तो कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जितना मैं करना चाहूं उतना मैं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। और जब शुरू से पता चल जाए, बचपन से ये एक्सपीरियंस मिल गया, तो फिर होता है कि क्यों नहीं अधिक से अधिक समय अपनी शक्तियों को हम इस प्रकार की सेवा में जोड़े, क्योंकि सेवा सुख देती है। उस गृहस्थ में रहकर के सुख के लिए ही प्रयत्न करने हैं, लेकिन उसमें दुख और सुख बहुत मिक्स है। सुख की मात्रा कितनी और बाकी मात्राएं परसेंटेज कितने हैं, और यहाँ एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम हमारे लिए नहीं सोचते हैं, हम सर्व के लिए सोचते हैं। उसी की जो आत्मसंतुष्टता होती है तो होता है कि हम क्यों नहीं। और अनेक जन्म हमने ये गृहस्थी जीवन तो जिया है ना, पुनर्जन्म में मानते हैं ना, तो एक लाइफ एक जन्म क्यों नहीं हम सेवा में बिता करके वो आंतरिक सुख और खुशी और शक्ति एनर्जी की अनुभूति क्यों ना करें। वो लाइफ में मजा है, मौज है, मस्ती है, तो क्यों नहीं वैसा जिए।
गिरीश भाई, हम कई दिनों से, कईयों का प्रश्न है कि कई दिनों से जब सेशन सुन रहे हैं तो उसमें एक बात बार बार आती है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्रोध विकार है, क्रोध को छोड़ना चाहिए। पर महाभारत में भी तो श्री कृष्ण ने पांडवों से युद्ध करने के लिए कहा, और हमने कई और शास्त्र में भी कई बार पढ़ा है कि जब गलत होता है, अन्याय होता है, तो क्रोध करना चाहिए, युद्ध भी करनी चाहिए। तो क्या कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए?
इस प्रश्न का जवाब मैं श्रेया बहन को थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। गीता में 700 श्लोक है, ठीक है, उसमें भी भगवान उवाच 574 श्लोक है, बाकी अर्जुन वाच है, धृतराष्ट्र वाच है, संजय वाच है। 574 श्लोक में एक श्लोक बताइए जिसमें वासुदेव, सो कॉल्ड हम जीव गीता का, उसमें उन्होंने पार्थ को कहा कि दुर्योधन तुम्हारा दुश्मन है, दुशासन तुम्हारा दुश्मन है, मारो इनको। गीता योग शास्त्र है। आप 18 अध्यायों का नाम देख लीजिए, सांख्य योग, बुद्धि योग, योग 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 योग, 18 चैप्टर्स का, हर चैप्टर का अंतिम श्लोक योग शास्त्र से, युद्ध शास्त्र। तो ये जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा युद्ध करो युद्ध करो, युद्ध नहीं है वो, कहा सिर्फ 11 से 12 श्लोक हैं जहां युद्ध शब्द, संग्राम शब्द, वॉर, ओनली 11 वर्सेस, बाकी इतने सारे श्लोक में योग। अच्छा, चैप्टर 6 5th श्लोक, पता है अर्जुन को, आपने महाभारत देखी है, महाभारत पढ़ी है, बड़ों से सुना है, विद्वानों की टीका टिप्पणी सुनी है, अर्जुन को पता है श्री कृष्ण क्या कहता है? तुम्हारा सबसे बड़ा दो दुश्मन काम क्रोध। आपको विश्वास नहीं होता, आप अपना मोबाइल खोलिए, टाइप करिए, आपको पता चलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं, श्लोक में लिखा है। और मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करता हूं, आपने पूरा महाभारत देखा है, पढ़ा है, आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी लगता है क्या अर्जुन बहुत कामी था, क्रोधी था? और बेचारा था हमेशा कौरवों का और उनका जो है ना सहन किया, लाक्षाग्रह को आग लगा दिया, 14 साल का वनवास, वो तो बेचारा सहन कर रहा था, अच्छा था, धर्म 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 कर रहा था, क्रोधी कहां नजर आ रहा था जी? फिर भी वासुदेव उसको कह रहा है काम क्रोध, कौन किसको कह रहा है? और उस शास्त्र में लिखा है, हर धर्म शास्त्र में लिखा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये दुश्मन है पार्थ तुम्हारा, इन पर जीतो, इन पर जीतो। और दुर्योधन कौन है? धन का दुरुपयोग करने वाला दुर्योधन है, तुम अधर्मी हो रहे हो। वासुदेव शास्त्रों में जो लिखा है, धर्म की स्थापना का युद्ध, अंदर युद्ध करो, मुझे भी इच्छा हो रही है, सामने वाले ने मेरे को गलत कहा, अपमान कर दिया, मेरे कैरेक्टर पर बात की, तो क्रोध करना चाहिए ना? अरे क्रोध उस पर नहीं करना है, तुम्हारे जो मन के अंदर की जो उथल पुथल है, महाभारत इधर है। दुशासन, शासन का दुरुपयोग, शक को नहीं, शक उत्पन्न करने वाला। तो जो क्रोध है ये मानव जीवन का बहुत बड़ा दुश्मन है। तो ये जो हम समझ रहे हैं कि युद्ध युद्ध एक्चुअली ऐसा नहीं है, उसको सही इंटरप्रेट करें तो वो हमको वापस योग, पार्थ तुम मन मेरे में लगाओ, तुम एक आत्मा हो शरीर नहीं हो, आत्मज्ञान दिया अर्जुन को, ठीक है।
पर अगर कभी अन्याय हो रहा हो, इनजस्टिस हो रहा हो तो क्या करें? सहन करते रहें, चुप रहें?
श्रेया बहन, आपका प्रश्न जो आपको आया है वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट प्रश्न है, मतलब या तो सामने वाले पे गुस्सा करो या खुद पे गुस्सा करो, अरे इन बिटवीन भी तो एक ट्रैक हो सकता है ना, हम दूसरे पे गुस्सा करें ना हम बहुत ज्यादा सहन करके खुद को वो करें, देयर कैन बी ए इन बिटवीन वे। सबसे पहले दोनों हाथ की उंगलियां रखिए, ये करिए कि मैं शांत स्वरूप हूं, हां सामने वाला अन्याय कर रहा है तो अन्याय करने वो कर रहा है, नहीं करना चाहिए। अब अन्याय का विरोध करिए, उसको हैंडल करिए, उसका सामना करिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। आत्मा को जब शक्ति मिल जाता है कितना सहन करना है, कितना सामना करना है, और अगर आपको लगता है फाइट ही करना है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, सामने वाला ज्यादा बलवान होगा तो वो आपको पछाड़ देगा, तो फिर आप ये नहीं सोचना अरे इससे अच्छा होता कि मैं फाइट ही नहीं करता, फिर रोते थे। बॉटम लाइन ये है, जीवन के किसी भी परिस्थिति में तीन ऑप्शन हो सकता है हमारे पास, या तो मैं सामना करूं फाइट करूं, या तो मैं सहन कर लूं जैसे दीदी ने कहा, या तो मैं किनारा कर लूं, भाई आप अपनी जिंदगी जियो मैं अपनी जिंदगी जीता हूं, मेरा आपसे कोई मतलब ही नहीं है, करो जो करना है। तीनों में, तीनों ही डिफिकल्ट है, एक भी आसान नहीं है। सहन करना भी बहुत डिफिकल्ट है, फाइट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, किसी को छोड़ना भी बहुत डिफिकल्ट। तीनों में एक चीज कॉमन रखिए, वो परमात्मा सिखाता है, खुशी से, प्यार से, शांति से इनजस्टिस का सामना करिए। हिम्मत नहीं है, खुशी से, प्यार से, शांति से सहन करिए, थोड़ा मुस्कुराइए, हाँ वो भी नहीं कर सकते, खुशी से, शांति से, प्यार से वहां से हट जाइए, करो भाई जो कर रहा है।
पर भाई जी काम भी तो कराना है, आज हम देखते हैं जब लोग गुस्सा करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो शासन भी बदल जाता है, इतनी ताकत है उसके अंदर। पिछले दिनों आपने भी देखा होगा कि केवल दो चार पांच दिन गुस्सा करने से हम शासन को भी गिरा सकते, इतनी पावर है, तो फिर तो करना चाहिए ना।
अच्छा चलिए मैं आपको उसका थोड़ा नेचुरल प्रस्पेक्टिव, मान लो अन्याय के विरुद्ध, किसी की भलाई के लिए, किसी के कल्याण के लिए, किसी के इनजस्टिस के लिए मैं गुस्सा कर रहा हूं, ठीक है। आप बताइए जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है फॉर ऑल वैलिड रीजंस, हमारा बॉडी केमिस्ट्री का हालत क्या होता है, हमारा बीपी का हाल क्या होता है, हमारा हार्ट का क्या हाल है, हमारा किडनी का क्या हाल है, और जब ये कलेक्टिव हो जाता है जो आप कुछ राष्ट्रों का देख रहे हैं वो बहुत हेल्दी नहीं है। और अगर मैं उसको पॉलिटिकली आपको बताऊं कि जो जेनजी था, जो मुझे कुछ नेपाल के भाइयों ने बताया, उनका लक्ष्य ये नहीं था, उनका लक्ष्य करप्शन के विरोध में था, उसका वो कहीं दूसरा ही डायरेक्शन में कि कोई और ही लेके चला गया, वो इतना वायलेंट हो गया, इतना ज्यादा उन्होंने डैमेजेस किए। क्रोध का अंत कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है, परमात्मा हमको सिखाते हैं एक सही तरीके से, कहते हैं इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट यू डू, इट इज रादर इम्पॉर्टेंट हाउ यू डू इट। वो जो कर्म है, कर्म की शुद्धि है, कर्म से जो भाग्य बनता है, जो दुआएं मिलती हैं, वो फिर बहुत ज्यादा इंटरप्ले करता है। तो टेम्पररली मुझे शायद रिजल्ट दिख गया, वहां का पॉलिटिकल गवर्नमेंट हट गया, बट आगे का क्या, उसका इतना ज्यादा जो नाम खराब हुआ है उस देश का, उसका इमेज खराब हुआ, इतना डैमेजेस हुआ है, वो हम बहुत टेम्पररी लेवल पर नहीं देख रहे हैं, उसका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। तो शरीर के लिए, संबंध के लिए, भविष्य के लिए क्रोध बहुत हानिकारक है, और क्रोध को कभी भी किसी ने भी जस्टिफाई नहीं किया है, गीता में भी जस्टिफाइड नहीं है, हमारे शास्त्रों में भी जस्टिफाइड नहीं है वो। और कभी कभी क्या करता है मनुष्य, अपनी कमी कमजोरी को दूसरों से वैलिडेट करा देता है, कृष्ण ने कहा है, इन्होंने कहा है, उन्होंने, हमको ये नहीं नजर आ रहा है कि मेरी कमी है, मैं अपने क्रोध पर नहीं जीता हूं, बस उसको सहारा ले रहा हूं, वैसा। तो थोड़ा हम मैन्युपुलेटिव भी कभी कभी हो जाते हैं, सेलेक्टिवली हो जाते हैं, बट एंगर इज नॉट एट ऑल हेल्दी।
मैंने एक बाहर की प्राप्ति है और एक आंतरिक प्राप्ति है, तो कभी भी अंदर का नुकसान करके बाहर की अगर प्राप्ति हो भी जाए तो उसमें कोई फायदा नहीं है। दिव्या बहन से मैं पूछना चाहूंगी, दीदी एक प्रश्न आया है कि कई प्रयासों के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, क्या ये पिछले कर्मों का फल है? बहुत मेहनत कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिल रही, तो क्या ये पूर्व का हिसाब किताब है?
सफलता का न मिलना, उसमें कर्मों की बात तो है ही। हम लोग सब जानते भी हैं कि अगले जन्म के कर्म के फल हमको यहाँ पर भोगना पड़ता है, और इसलिए कई बार खूब मेहनत करने के बाद भी जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ प्रेजेंट समय हम जो कार्य कर रखे हैं वो हमारी विधि सही है, मेथड जिस पद्धति से कर रखे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं वो भी मान्य रखती है। उस चीज को मैं सही तरीके से न करूं और कहूं कि मुझे सफलता नहीं मिलती है, तो हम जो भी कार्य करते हैं जहां हमें सफलता नहीं मिल रही है हमको अपने आप में जाके देखना चाहिए। मैं न समझ सकती हूं तो और किसी को भी गाइडेंस लेकर के कि मैं इस प्रकार से कर रही हूं, आपको कहां कमी लगती है, कहां राइट वे में मुझे करना चाहिए, आप बताइए। जैसे फिजिकल शरीर के लिए हम क्या चेकअप कराते हैं ना, गाइडेंस लेते हैं, तो हम जो कर रहे हैं उनमें भी हमें चेक करना चाहिए। कई बार हम प्रॉपर करते नहीं हैं और फिर ये चीज मेरे से बन नहीं रही है, और प्रॉपर नहीं है इसलिए बार 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 मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात ये है कि जो मेहनत कर रहे हैं प्रेजेंट समय उसमें सक्सेस समय नहीं मिलती, लेकिन कई बार उसमें काफी नॉलेज हमारी बढ़ती है, ज्ञान हमारा बढ़ता है, और कई बार हमें पता भी चलता है कि यहाँ हमारी ये मिस्टेक है वो हो रही है। और बार बार मेहनत करने से हमारा एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा मेहनत करने की क्षमता और शक्ति बढ़ी, ये भी तो सफलता है कि नहीं है। सहज कई बार ना बच्चों को कहते धनवान फैमिली में जन्म लिया, सब कुछ बचपन से मिल रहा है, कोई मेहनत ही नहीं की है, उनके लिए छोटी सी बात भी कोई सामने आ जाए तो वो कुछ नहीं कर पा रहे है। और जिन्होंने मेहनत की है बचपन से, उनके पास कार्य करवाया है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। मुझे मेरे जीवन की बात याद आती है कि मैं 10 साल की थी, बॉम्बे में थी, बहुत बारी गांव की दिवाली के बारे में सोचा था, तो मेरी बहुत दिल थी कि मुझे गांव में जाके दिवाली देखनी है, गांव की दिवाली मेरे को देखनी है। अभी मदर और वो निकल सक ऐसा नहीं था दिवाली में, तो फादर ने कहा नहीं इसकी इच्छा है ना पूरी करो, जो उनको अकेला भेजते हैं तो मदर तो नहीं तैयार होगी, लेकिन उन्होंने हर प्रकार की मुझे ट्रेन किया, यहां से बिठाया भी, जो पैसेंजर थे उनसे भी बात कही कि अकेली जा रही है, सामने लेने के लिए आए, मुझे फोन नंबर दिए, नाम दिए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नहीं अकेली ये जाएगी तो उनकी क्षमता है, अभी से हम ही डरा रहे हैं तू नहीं जा सकती इतनी एज में अकेली नहीं जा सकती है, तो क्या होता मेरा डर बड़े होकर के भी अकेले जाने के लिए मेरे जीवन में डर बना रहता। लेकिन उन्होंने मुझे ट्रेन करके भेजा तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं अकेली जा सकती हूँ ना, और ट्रेनिंग भी अच्छी मुझे मिल गई। तो हमें जो भी कार्य करते हैं नहीं हो पाएगा पहले से ही ये सोच, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो डाउट क्रिएट करके हम करते हैं, पॉजिटिव सोचे तो वो शक्ति हमें मिलेगी और सफलता भी मिलेगी।
कई लोग दीदी ऐसा भी कहते हैं कि हम फलाने स्थान पर गए तो हमें सफलता मिली, तो ऐसा कोई स्थान आपके ध्यान पर हो जहाँ हम जाएं तो हमारी भी सफलता मिल जाए? ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई ऐसी जगह होती है कि वहाँ जाएं तो पक्का निश्चित रूप से सफलता मिल जाएंगे?
कोई स्थान पर जाने से कोई सफलता नहीं मिलती है, है ना?
पर कई लोगों के अनुभव है दीदी कि हम वहाँ गए और उसके बाद ये काम हमारा हो गया।
कहावत है कि वृक्ष की डाली पर पंछी बैठा और उसी समय डाली टूटी। ये सफलता होनी ही थी और उसी समय पर ही हम उस स्थान पर जाकर के प्रयास किया और सफलता मिली तो हम समझते स्थान की। फिर और भी बार जाकर के देखो, हर समय उस स्थान पर जाओ हर बात को लेके तो सफलता मिलती है, क्या समझते हो? मिलती है क्यों? वो स्थान तो सफलता देता है। तो जब आपको सफलता चाहिए तो उसी जगह पर चले जाओ। चले क्या जाओ, वहां ही घर लेके रह जाओ, वहां ही अपना बसेरा बना लो, तो जीवन में हर क्षण सफलता सफलता साथ रहेगी। ऐसा नहीं होता, खुद का सोच, खुद के कर्म, प्रेजेंट पास्ट के उस पर आधारित है। एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आई कि स्थान परिवर्तन से कोई सफलता मिल जाए उस स्थान पर जाने से। मैंने भी किसी बहन से सुनी थी कहानी, कौवा जो आवाज करता है ना वो कर्कश आवाज होता है, सुनना पसंद नहीं, जहां बैठे तब सब भगाते रहते उसको, उड़ाते रहते। तो कौवे ने ये सोचा कि मैं इंडिया छोड़ देता हूँ। अभी हम सबको भी विदेश जाने का शौक रहता है ना, वहां कमाए और जाए। कौवे को भी हुआ कि भाई मैं इंडिया छोड़ के विदेश में चले जाऊं। वहां चले गए लेकिन उसने अपनी नेचर, उनका आवाज स्थान बदलने से बदल गया। वहां जाके भी कां 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 करके तो वहां भी उड़ाने लगे। तो समझ में आता है कि स्थान से कुछ नहीं होगा, मुझे अपने आप को, मेरी नेचर, मेरे संस्कारों को मुझे बदलना पड़ेगा, स्थान कुछ नहीं करेगा।
और एक लास्ट क्वेश्चन अभी हम गिरीश भाई से लेंगे कि भाई जी कल स्वामी भाई का सत्र हुआ होगा जिसमें उन्होंने मेडिटेशन सिखाया होगा, तो किसी का प्रश्न है कि भाई जी ने उसमें विजुअलाइजेशन टेक्निक सिखाई होगी और कहा होगा कि अभी ऐसा देखो कि हम आश्रम से निकल रहे हैं, आबू की ओर आगे बढ़े हैं। तो कहते मैंने देखा ही नहीं है आबू, ना मैंने कभी सड़क देखी है, तो मैं क्या विजुअलाइज करूं, ऐसे कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? तो जो चीज देखी नहीं है, जैसे ये उनको विजुअलाइज नहीं हो पाया, ऐसे ना आत्मा देखा है ना परम धाम देखा है, तो कैसे उस चीज को विजुअलाइज करें, मेडिटेशन की क्या विधि है? और उसी के साथ उन्होंने पूछा कि खुली आंख से योग करना बहुत मुश्किल लगता है, आंख बंद भी करते हैं तो सर में दर्द होता है, तो हमारी विधि ठीक है नहीं तो सही विधि क्या है?
जी, ये मेडिटेशन को विधि प्रमाण बहुत डिटेल में आपको अगर सीखना हो तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जिस भी स्थान से आए हैं वहां ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाएं और निशुल्क ये मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है, उसके जो स्टेप्स हैं, उसकी जो विधि है, उसका जो आधार है, वो अच्छी तरीके से समझें। बस मैं पिछले प्रश्न का एक छोटा सा आपको झलकी देना चाहता हूं, पूछा कि कर्म का, तो गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है, उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। आत्मा ही आत्मा का उद्धार कर सकता है, उसे नीचे गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा बंधु, जो दीदी कह रहे थे हमारे कर्म हमारी सोच, हमारे संस्कार, उससे हमको सफलता मिलती है। जब मेडिटेशन के बारे में हम बात करते हैं तो विशेष तौर पर विजुअलाइजेशन, तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मा में है। एक है मन, जो विचार करता है, जो सोचता है, जो कंटेम्पलेट करता है, जो क्रिएट करता है विचारों को। नंबर टू है बुद्धि, ये आत्मा का एक जैसे हाथ है हमारे, ऐसा एक कर्मेंद्रिया है, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया, वो देखता है, निर्णय करता है, जजमेंट देता है, और उसकी विजुअलाइजेशन की पावर होती है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हर व्यक्ति के उंगली के जो मार्क होते हैं वो अलग होते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति की विजुअलाइजेशन पावर अलग हो सकती है। कई लोग होते हैं जिनको बहुत स्पष्ट तुरंत दिख जाता है, वो इमेजिन भी कर लेते हैं। कई लोगों को थोड़ा ब्लर्ड दिखता है, हेजी दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है, गायब हो जाता है फिर आ जाता है, और कुछ लोगों को फिर बहुत कम ही नजर आता है। बट इट इज परफेक्टली फाइन। अगर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे स्वामी भाई ने कहा इसको देखो उसको देखो, आपको नहीं दिख रहा है तो ये नहीं समझना, और फिर जब हम बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं तो फिर वो हमको फिर दर्द के रूप में या हेडेक के रूप में होता है। बहुत फोर्सफुली नहीं करना है। और तीसरा है हमारे संस्कार, जो हम फील करते हैं। तो अगर ये तीनों सिंक में है, जो मैं सोच रहा हूं, थोड़ा बहुत दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी दिख रहा है तो भी अगर मैं उसकी अनुभूति कर सकता हूं। कुछ लोग होते हैं जिनको सपना बहुत क्लियरली याद रहता है, कुछ लोग होते हैं सपना थोड़ा बहुत याद है फिर आगे का भूल गए, कुछ लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता है। सो दैट्स द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। तो हम यहां कहते हैं कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी मैं आत्मा हूं। और आजकल तो इतना ज्यादा मीडिया का और फिर इलेक्ट्रॉनिक और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि आप उसे देख सकते हैं, देख नहीं सकते इन द सेंस जो टेलीविजन में या मोबाइल में बहुत सारे जो मेडिटेशन कमेंट्रीज हैं, और उसको देख करके आप उसको फील कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो ये तीनों को हम एक लेवल पर लेकर आते हैं तो एकाग्रता की शक्ति आती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप छोटा छोटा करिए, एक मिनट का करिए, और उस एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं। अब यहां बैठ करके मैं ध्यान लगाने का कोशिश कर रहा हूं लेकिन मेरा 23 घंटा मैं बहुत उथल पुथल, डर, चिंता, भय, अशांति में था, तो फिर यहां मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं ध्यान लगाना बहुत आसान है लेकिन ध्यान के पहले सारा जीवन ध्यानपूर्ण जीवन जीना, वो आपके क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को एनहेंस करेगा या उसको फिर वो डिप्लीट करेगा। तो हम मेडिटेशन की प्रक्रिया भी सीखें लेकिन वो जो 23 घंटे में चिंता ना करे, क्रोध ना करे, परेशान ना हो, उसका भी टेक्निक्स आपको बताया जाएगा। कर्मों की गति जैसे दीदी ने कहा, हमारे एक ड्रामा का कंसेप्ट है, समय का कंसेप्ट है, ये सब टूल्स हैं जहां मेरा मन डाइवर्ट ना हो, सारा दिन शांत रहे, और वो शांति वाला मन फिर शाम को या सुबह मेडिटेशन करने का प्रयास करेगा तो आसानी से दिख जाएगा। तीसरी और अंतिम बात जो प्रश्न में था कि हम आंखें खोल करके मेडिटेशन, यहां ब्रह्मा कुमारीज में सिखाया गया है लेकिन जनरल परसेप्शन ये है कि हम आंखें बंद करके करते हैं। इसका भी अगर हम समझने का प्रयास करें कि क्यों आंखें बंद करके व्यक्ति पूजा पाठ जप तप मेडिटेशन करता है, और उसका एक ही आधार है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो ऐसा मान्यता है कि हमारी एकाग्रता एनहेंस हो जाएगी, क्योंकि मैं आंखें खोल कर देख रहा हूं तो कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, तो मेरा मन वैसे ही भटक जाएगा, मैं ऊपर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसमें हम ये बताते हैं कि संसार का एक कार्य बताइए जो आपको ध्यान पूर्वक करना है लेकिन आंखें बंद करके करनी है, सोने के अलावा। आप गाड़ी चलाइए आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप अपना ऑपरेशन कराइए डॉक्टर से और डॉक्टर बोले मैं आपका अच्छी तरह सर्जरी करूंगा आंखें बंद करके, आप जाएंगे ही नहीं डॉक्टर के पास। दोस्तों, ध्यान का, एकाग्रता का, मेडिटेशन का स्थूल नेत्रों से कुछ लेना देना नहीं है। बच्चा ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है तो वो आंखें बंद करके नहीं पढ़ेगा, मम्मी उसको परमिशन ही नहीं देगी आंखें बंद करके पढ़ो, बोलेंगे आंख खोल के पढ़, जोर से पढ़। सो ये बहुत कुछ हमारे गलत फहमियां हैं जो शायद हमारे मन में घर कर गई हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस, इसका एक एडवांटेज भी है, जब आप आंखें बंद करके प्रैक्टिस करेंगे, स्थान के बारे में आप बता रहे थे, प्रश्न पूछा, कोई स्थान में जाते हैं तो हमारा सफलता हो जाती, उसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है जिसको हम न्यूरो एसोसिएटिव नेचर कहते हैं, ब्रेन का, अगर मैंने ऐसी प्रोग्रामिंग कर लिया है कि वहां जाने से ही सफलता होगी तो सफलता होके रहेगी, और फिर आप बोलोगे देखा स्थान, इट्स नॉट द स्थान, इट्स आपका माइंड और आपका ब्रेन इज इन सिंक। तो आंखों से मेडिटेशन नहीं करना है, आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। मान लीजिए आप सफर कर रहे हैं, यहां बैठे हैं, आपको घर को याद करना है, तो आप आंखें बंद करने की तो आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपने पिताजी और माताजी को याद करने बोलूं तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है। मैं कहूंगा आप अपने कार्य क्षेत्र को याद करिए तो आपको आंखें बंद कर, जैसे ही भगवान या मेडिटेशन या ध्यान आता है तो आंखें बंद। तो ये एक बहुत ही हमारा, क्या कहूंगा मैं, एक गलत मान्यता है, एक बिलीफ सिस्टम है, उस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा देर के लिए आप उसको साइड में रखें और एक नए पद्धति से शुरू करें। इनिशियली आपको कुछ तकलीफ हो सकती है आंखें खोल के करने में, लेकिन इसका एडवांटेज ये है, अगर आपने आंखें खोल करके जहां चाहूं मैं मन को लगा सकता हूं या कितना भी हलचल हो, ये बहुत बड़ी एबिलिटी है मन की, आप उसे डाइवर्ट कर सकते हैं, आपका मनोबल और आत्मबल बहुत अच्छा है, और सारे दिन में कहीं पर भी ट्रैवल करते हुए, बातें करते हुए, खाना बनाते हुए, कुछ कार्य करते हुए आप परमात्मा को याद भी कर सकते, क्यों, क्योंकि आपने ओपन आइड मेडिटेशन की प्रैक्टिस की है एंड यू आर कंफर्टेबल, आप जब चाहें जहां चाहें मन को लगा सकते हैं, आंखों का उससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। थैंक यू।
बहुत ही सुंदर रीति से दिव्या बहन और गिरीश भाई ने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन मैं समझती हूँ ये ऐसे होता है जैसे रावण का एक सिर काटो तो 10 और आ जाते हैं, और जो एक अच्छी निशानी है, एक स्टूडेंट की अच्छी निशानी है कि हम जितना सुनते हैं उतने और मन में प्रश्न आते हैं, इसीलिए आध्यात्मिकता का पहला स्टेप होता है सुनना, दूसरा समझना और फिर तीसरा बनना। तो इन दिनों में आपने काफी सुना, थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा, लेकिन हम जरूर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपने ये जो हिम्मत करी है इसको आगे बढ़ाएं। आप जब वापस अपने शहरों में जाएंगे तो आप जरूर नजदीकी जो सेवा केंद्र है वहां बहने हैं उनसे मिलें, वापस एक बार कोर्स करें, वापस इन बातों को समझने की कोशिश करें, और फिर तो हम सबका प्रयास यही रहता है कि जो परमात्मा हमें सुना रहा है हम उसका स्वरूप बन जाएं। तो बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद जो आप सभी यहाँ पधारे, और हम अभी एक मिनट का साइलेंस लेंगे, लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि 15-20 मिनट हम सभी अगर और बैठें, क्योंकि जो अगला प्रोग्राम है थोड़ी सी देर का है, लेकिन जैसे आप यहाँ आज कॉन्फ्रेंस में आए हैं, ऐसे जो आप अभी मंच पर देखेंगे ये पिछले 25 सालों में समय प्रति समय कॉन्फ्रेंसेस में आए हैं और कॉन्फ्रेंस में आने से नियमित हो गए, माना फिर अपने शहरों में गए, कोर्स किया, रेगुलर स्टूडेंट्स बने, उनके जीवन में बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन आए। सब तो नहीं पहुंच पाए क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों से हैं, पर कुछ गिने चुने हमारे बीच में पहुंचे हैं जिनका जीवन परिवर्तन के लिए ये कॉन्फ्रेंस निमित्त बनी, तो हम उनको भी थोड़ा सा फेलिसिटेट करना चाहेंगे और उसमें से सिर्फ एक का अनुभव आपके समक्ष रखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि अगर 15-20 मिनट आप और हमारे साथ बैठें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी को फिर से शुक्रिया। एक मिनट हम परमात्मा की याद में बैठेंगे।
ये सबसे सुहाने पल है जिंदगी के, मिलन सिंधु में जब समाए हुए हैं, समाए हुए हैं।